Srimad Bhagavatam, Anuvad or Tatparya, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Kedwara. Pratam Skandha Dvitiya Adhyay Shlok Sankhya Che Saha Vai Pungsam Vai Nischai Hi Pungsam Manushyong Ke Liye Paraha Divya Dharamaha Vritti Yataha Jisse Bhaktihi Bhakti Adhokshaje Adhyatma ke prati Ahaituki Akaran Apratihata Abhanga Yaya Jisse Atma Atma Suprasidati Purnataya Prasanna Hota Hai Anuvad Sampurna Manavta Ke Liye Param Vritti Dharam Vahi Hai Jiske Dwara Sare Manushya Divya Bhagavan Ki Prema Bhakti Prapt Kar Saken Aisi Bhakti Akaran Tata Akhand Honi Chahiye Jisse Atma Purnataya Tusht Ho Sake Tatparya Is Katan Ki Dwara Shri Sud Goswami Naimisharanya Ke Rishiyon Ke Pratam Prashna Ka Uttar Dete Hain उन्होंने सुद जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माओं या जनसामान्य उससे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग या संन्यास का मार्ग, निवृत्ति मार्ग या वैराग्य का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है जहां जीवन सत चित तथा आनंदमय है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो नहीं ही है। कष्टों से छुटकारा पाने के प्रयास व्यर्थ है और कष्टों का क्षणिक नाश ही झूठा सुख कहलाते हैं, झूठ सुख। अतः प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान। अतः प्रगतिशील प्रगति प्रगति ही माया है, भौतिक प्रगति। भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय, सुनो ध्यान से, तथा मोह पूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि इसमें सच्चिदानंद जीवन बीतता है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो या कभी कभी दूषित हो जाते हैं। उदाहरण अर्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठता वृत्ति है। Actually, it's not sanya. It should be vairagya. Vairagya, farak hai. To grihastha vairagi bhi ho sakte. Aise bhog se rog ke lakshan badhte hain aur uski avadhi bhi badh jate hain. Atha bhagavad bhakti shuddh honi chahiye. Arthat usme bhautik sukh upabhog ki ranch matra kamana nahi rehni chahiye. Atha manushya ko chahiye ki vritta ki kamana sakam karma tata darshanik kalpana se rahit bhagavad bhakti rupi uchakoti ki vritti ko swikar kare. Isi se unki seva me shashvat santosh prapt hoga. Hamne jan bhuj kar dharm ko vritti kaha hai, kyunki dharm ka mool arth hai jo kisi ke astitva ka poshan kare. Jeev ke astitva ka poshan Bhagavan Krishna ke saath apne karmon ko samanvit karna hai. Krishna samasta jeevon ke kendra bindu hai. Ove anya samasta jeevon me ya shashvat rupon me sarvakarshak jeev hai. Pratyek jeev ka divya jagat me shashvat rup hota hai. Aur Krishna un sabon ke liye param akarshak hai. Krishna hi purna hai. Aur anya sabhi unke angsh rup hai. Inme sevak tata savior ka sambandh hai. Ya divya hai. Aur hamare sangsarik anubhav se sarvata bhinna hai. Ya sevak savior bhav ganishtata ka sarvotkrisht rup hai. Bhakti ki pragati se iska anubhav hoga. Har vyakti ko is bad avastha mein bhi Bhagavan ki prema bhakti karni chahiye. Isse vastavik jivan ka sanket prapt ho sakega aur tushti mil sakegi. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktir adhokshaje ahaitukya pratihata yayatma supasidati. Sampurna manata ke liye param vritti dharma wahi hai jiske dwara sare manushya divya bhagwan ki prema bhakti prapt kar sakein. Aisi bhakti akaran tata akhand honi chahiye jisse atma purnataya tusht ho sake. Ish shlok bahuti mahatva purna hai. To har vyakti ka kartavya hai is prashna puchna. Jivan ka kya udeshya hai? Hum kaha se aaya hai? Hum kaha jayenge? Aur jivan ka kya arth hai? To is mahatvapurna prashna ka uttar is shlok mein hai. Ekdam spasht uttar hai. Aur keval is vachan ka samajhne se to pura manav samaj ke asankhya samasyon ka samadhan milte. Kali is shloka. Bhaktivinoda Thakur bhi waise bolte hain, jeev Krishna das e vishwas kar leta aur dukhanai. To kali yehi samajhna hai ki hum jeev hai, hum sharir nahi hai. Sharir astai hai, nashvan hai. Aur sharir ke saath kasht hote hain. शरीर प्राप्त करने के साथ तो कष्ट प्राप्त करना असंभव है, और भौतिक शरीर के साथ भौतिक चेतना होती है जिसका मुख्य लक्षण है अज्ञान। चेतना है लेकिन हम जिंदा शव जैसे है, तो वास्तविक चेतना कि मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, वो चेतना नहीं है। तो मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा यही स्वरूप, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं कृष्ण दास हूं। तो खाली यही छोटी सी बात समझने से पूरा मानव समाज के असंख्य समस्याओं का समाधान होते है। और इसको समझ के क्या करना है, जी कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख आना है, और दुख नहीं और कुछ भी दुख नहीं होते अगर हम समझते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं। फिर उसके बाद क्या करना है, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सुबह सब, राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोलो। तो सवाई फुंग संग परो धर्म, पर धर्म परम धर्म, सब जीव के परम धर्म है कृष्ण सेवा करना। परम धर्म श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी अनुवाद में उन्होंने धर्म शब्द वृत्ति अनुवाद किया, वृत्ति वृत्ति मतलब जिस वो कर्म जिससे हमारे अस्तित्व का पालन पोषण होते हैं। तो अन्य इस अधोक्षज कृष्ण सेवा के व्यतीत और सभी प्रकार का धर्म क्या है, देह धर्म, समाज धर्म, भ्रंत भूल धारणा से उद्भूत धर्म। तो वास्तव में ये सभी अन्य प्रकार के धर्म तो धर्म नहीं है। धर्म इस शब्द का मूल है धृत, जिससे उदाहरण शब्द आते हैं। तो हमारा अस्तित्व तो कैसे उसका धारण होते, अर्थात हम जो है हमारा क्या मूल लक्षण है, तो पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियों नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम जीव है। तो और सभी प्रकार के धर्म, इंद्रिय जनित धर्म, मानसिक धर्म, बुद्धि से उद्भूत धर्म और सब काल्पनिक धर्म है। तो अगर मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरा भारत महान, ऐसे बोलना मेरा धर्म है, और जीवन उत्सर्ग करना भारत को महान बनाने के लिए, यही मेरा धर्म है, देश धर्म, देशभक्ति बोलते। और आगे मैं सोचता हूं कि यही नारी मेरी पत्नी है, तो फिर मैं सोचूंगा कि पत्नी की रक्षा करना और पूरा परिवार जो पत्नी में से उत्पन्न होते हैं। तो मेरा धर्म है पूरा परिवार का पालन पोषण करना, वो भी एक प्रकार का धर्म है। और शास्त्र में इस धर्म का वर्णन है, लेकिन परम धर्म, शाश्वत धर्म वो क्या है? पत्नी पुत्रों पुत्रियां वो संबंध, ये सब संबंध देहगत अर्थात देह से प्रस्तुत होते हैं, और देह का नाश के साथ ये सब संबंध समाप्त होगा। तो वो देह का पतन का मरण के बाद तो वो मार गया व्यक्ति का तस्वीर रखना है उसका घर में, लेकिन खाली तस्वीर है, वो व्यक्ति कहा गया है कोई नहीं बोल सकते। वो संबंध तो अभी वो संबंध तो खाली स्मरण में है, वो व्यक्ति चला गया नहीं, तो वो संबंध सनातन नहीं है। सनातन धर्म है वो संबंध जो सनातन है। तो हमारी सभी स्थिति जो हम संसार में मिलते हैं वो सब असनातन है, क्षणिक, और इस प्रकार हम असंख्य प्रकार के संबंध स्थापन करते हैं, फिर काल का प्रभाव से सब टूट जाते हैं। शायद पिछले जन्म में मैं मेरे माँ बाप को बहुत आदर बहुत स्नेह किया था, और माँ बाप ऊंट और ऊंटी थे, माननीय ऊंट पिताश्री, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या हुआ क्या था और भविष्य में क्या होगा हमें नहीं मालूम। क्या होते हैं यंग यंग वापी स्वरण भावम छजन जे कले वरंग थंग थमे वाई थी कौन थे सदा थद भाव भाविता। जो वस्तु या विषय पर हम देह त्याग करके स्मरण करते हैं तो उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। तो अगर युद्ध में कारगिल में, अब याद है कारगिल उस समय तो कारगिल अभी सब भूल किया था, तो कितने साल के पहले, 5 साल ऐसे 6 साल, और समय तो कारगिल हम कभी भी भूल नहीं करेंगे, तो 3 महीने में सब भूल हो गया। तो अगर कारगिल में एक सैनिक भारतीय सैनिक मर जाते पाकिस्तानी फौज को आक्रमण करके, तो पाकिस्तान द्वेष करके नफरत करके मर जाते हैं, और उसका फल होगा कि पाकिस्तान चिंतन करके तो पाकिस्तान में जन्म लगा, और करीब अगला जन्म में भारत को आक्रमण करके करेगा। तो ऐसा होता है, देखो तो ये संसार चक्रमण कितनी बड़ी माया है। तो एक जीवन में हम मेरा भारत महान सोचते हो, पाकिस्तान दुश्मनी, अभी तो भाई भाई हो गया और कुछ दिन के बाद फिर दुश्मनी होगा और उसके बाद भाई भाई होगा। तो राजनीतिक स्थिति के अनुसार अगर पॉलिटिशियंस के लिए अनुकूल है पाकिस्तान को भाई भाई बोलने तो भाई भाई बोलते हैं, और अगर उसके पॉलिटिकल पोजीशन के लिए तो پاکستان ہائی ہائی بولنا ہے تو ہائی ہائی بولتے, اور سب پرجا اتنے بڑے مورکھ ہے کہ پولیٹیشن آگا پاکستان سب دشمن ہے تو اگر پولیٹیشن بولتے تو سب پرجاؤں بھی بولتے, اور اگر سب بھائی بھائی اور ٹھیک ہے ابھی سب بھائی ہے تو سادھارن لوگ جنتا تو مورکھ ہے سب, اور نیتاؤں بھی مورکھ ہے. اندھا یتھا اندھائے روپ نیمان استھی پیش تنترام اور دام نبھا, تو ایک وہ سب اندھا ہے اور اندھا نہیں جانتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے, اور دوسرا آدمی آتے ہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے میرے ہاتھ پکڑو میں تم کو لے جاؤں گا, لیکن وہ اندھا آدمی نہیں سمجھتے کہ وہ لے جانے والا وہ بھی اندھا ہے. اور ایسے دونوں تو نالے میں گر جاتے ہیں, اور ایسے اندھا یا جھندھا ہے وہ مطلب ہمارا پورا جیون آدھیاتمک درشٹی ویرہت ہونے سے ہم سب اندھے ہیں, اور سب اندھ ہونے سے سب نالا میں نہیں گرتے ہیں, ہم نرک میں گر جاتے ہیں. تو یہ سب بھوتک تتھاکتھت دھرم پالن کرنے سے ادھوگتی پراپت ہوتی ہے, اور پرم دھرم واستوک دھرم پالن کرنے سے ہم پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جننی جٹھر شینم اس سنسارک ستھتی سنسار چکرمن سے مکت ہوتے ہیں. تو ایک پرکار کا دھرم ہے موکش دھرم, اس مارگ اولمبیاں کا لکشیہ ہے سنسار چکر سے مکت ہوں, لیکن ایسے ویکتی سویکار نہیں کرتے ہیں کہ تریگنوں سے پرے ویکنٹھناتھ بھگوان ادھوکسج ہے, اور سویکار کر کے بھی تو پورا سویکار نہیں کرتے, بولتے کہ جی ہاں بھگوان ہے پر میں بھی تپسیا کرنے سے بھگوان جیسے بن جاؤں گا, اور بھگوان کی جوتی میں لین ہوں گا. تو ایسے ویکتی سمجھتے ہیں کہ بھوتک ستھتی دکھمائی ہے, لیکن کی جیو کا ایک ہی دھرم ہے واستوک دھرم ہے ادھوکسج بھگوان وشنو کے شری چرن کمل میں آتم سمارپن کرنا, وہ نہیں سمجھتے سویکار نہیں کرتے. تو یہ ادھوکسج شبد بہت ہی مہتوپورن ہے, یہ شبد نہیں سمجھ کے تو بار بار بھگوان بھگوان پربھو پربھو بول کے بھی ہمارا کوئی واستوک سمبند بھگوان کے ساتھ وہ نہیں ہوگا. تو ادھوکسج اکش اس یہ ادھوکسج شبد تین شبد سے گھٹت ہے, ادھ اکش ج اکش مطلب انک, ج اس کا مطلب جنم ارتھ اکشج اکشج اس کا مطلب سادھارن درشٹی سے جو درشٹ ہے, اور ادھوکسج اس کا یہی شبد کا ارتھ جو سادھارن درشٹی کے اتیت ہے. तो इसका क्या मतलब? हम बोलते हैं कि हम मतलब शास्त्र वाणी है और सब महान महान ऋषियों की वाणी है कि भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन गुण के अतीत है, वे ही अधोक्षज। साधारण दृष्टि से इनका दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब पंच सहस्र वर्षों के पहले जब इस धराधाम में उपस्थित थे तो केवल शुद्ध भक्तजन इनको नहीं देखा, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, बड़े राक्षस भी भगवान कृष्ण का दर्शन मिले और बहुत साधारण व्यक्ति भी। तो वो कैसे संभव था? अगर भगवान कृष्ण साधारण आंखों से दृश्य नहीं है तो कैसे ये सब व्यक्ति भगवान का दर्शन मिले? तो उत्तर है तो नहीं मिले। तो वो भगवान का रूप दर्शन करके भी कि वे भगवान है तो स्वीकार नहीं किए। परम या श्रेष्ठ उदाहरण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का दूत का कार्य करके धृतराष्ट्र का राजसभा गए और धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि कौरव पक्ष को बोले कि मैं भगवान हूं और मैं पांच पांडव को समर्थन करता हूं, तो युद्ध नहीं करके भी चूंकि मैं पांच पांडव को समर्थन करता हूं तुम्हारी कोई आशा नहीं है। तो ये सब बात सुन के दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया। वो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसे है तो हमेशा गुस्सा रहता था, लेकिन और ज्यादा गुस्सा हो गया क्या तुम भगवान हो? तो उस समय भगवान कृष्ण प्रमाण देने के लिए इनका विष्णु विश्वरूप प्रदर्शन किया। अर्जुन को विश्वरूप दिखाने के पहले वो युद्ध या कुरुक्षेत्र जाने के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन आदि कौरव दल को प्रदर्शन किया और धृतराष्ट्र भी देखा। तो धृतराष्ट्र का पूरा जीवन में तो कुछ नहीं देखा, लेकिन उस समय विशेष अनुरोध किया श्री कृष्ण से कि मुझको थोड़ा समय के लिए मुझको दृष्टि शक्ति दे जिससे मैं आपका विश्वरूप दर्शन मिल सकता। तो वास्तव में वो विश्वरूप से आदि द्विभुज मुरलीधर वो रूप श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्ख लोग ही नहीं समझते और विश्व रूप पर आकृष्ट होते हैं। तो उस समय दुर्योधन प्रत्यक्ष से अर्थात इनके स्वयं के अंकों से देखा कि कृष्ण विश्व रूपी है, तो फिर भी विश्वास नहीं किया कि यही भगवान है। बोले ये कुछ इंद्रजाल है, जादू है, साई बाबा जैसे। वो साई बाबा तो इतना सा नहीं देख सकते, कुछ विभूति छाया दिखाते, कुछ भी वो लकड़ी तो आग से लाना तो उससे छाया मिलते, लकड़ी जलाने से तो छाया मिलते, ये साई बाबा का प्रदान है मानव समाज के लिए। वो एक्चुअली इन गोवा में साई बाबा बोल के सब वो शिरडी वालों को समझते, लेकिन वो दूसरा साई, साई बाबा मेक्स यू साई, वो छाया देते विभूति बोलते। तो क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि शुद्ध नहीं थी, इसलिए स्वयं आंखों से भगवान कृष्ण का रूप दर्शन मिलके भी तो कृष्ण भगवान नहीं देता, क्योंकि वो सोचा कि वो साधारण व्यक्ति है, मेरा दुश्मन है, तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं और मेरे सभी योजनाएं अच्छे हैं, लेकिन ये कृष्ण बड़ा बदमाश तो हमेशा मेरे सब प्लान में बाधा देते, तो वो सब असुर ऐसे बोलते नहीं। हिरण्याक्ष वराहदेव को बोला कि आओ मेरे सामने और मैं तुमको मरा दूंगा, जो संभव नहीं है भगवान को मार देना। तो ऐसे सोचते कि वो एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूं और मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मेरे जैसे कोई शक्तिमान नहीं है। तो भगवान कंस ऐसे बोला ना, तो भगवान विष्णु तो सबके हृदय में चला गया है, तो मुझसे डर लग के मुझसे डरते हैं, इसलिए सबके हृदय में प्रवेश किया है। तो अगर वो बाहर आएगा मैं उसको मरा दूंगा, ये कंस का विचार है। तो कि भगवान विष्णु की शक्ति असीम है और कि वे सब के हितैषी है, असुरिक जन स्वीकार नहीं करते। भगवान सबके हितैषी है, लेकिन असुरिक जन का विचार में मेरा हित मेरा कल्याण क्या है, भगवान को भूल करके उपेक्षा करके खुद को भगवान स्थापना, और मैं धनी हूं, मैं जगत का केंद्र हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सभी वस्तुओं की भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी, ये आसुरिक भावना है। ऐसे सोचने से कि भगवान हमारे परम हितैषी है तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सोचते थे कि मेरा हित है धनी होना, प्रशंसित होना, जनप्रिय होना। कि भगवान धनी है, भगवान सब की प्रशंसा का पात्र है, कि भगवान सब की प्रेम का आस्पद, तो आसुरिक जन स्वीकार नहीं करते। इसलिए अधोक्षज विष्णु का दर्शन प्राप्त करके भी तो भगवान को नहीं देखते, देखते हैं लेकिन इनके अंतर दर्शन है कि ये एक व्यक्ति है, ये मेरा दुश्मन है, जिनकी दिव्या दृष्टि है। तो सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान का दर्शन मिलते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सदा जो मेरे जो मुझको प्रेम करते हो, श्री कृष्ण बोलते हैं, जो सदैव मुझको देखते और मैं भी मेरा वैसे भक्त सदैव देखता हूं, वो कभी भी मुझको नहीं बोलते और मैं ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं बोलता हूं। तो ये प्रेम संबंध से भक्तजन भगवान की अनुपस्थिति में भी भगवान को देखते, क्योंकि वास्तव में भगवान सदैव सर्वत्र उपस्थित है। लेकिन अभक्तजन तो भगवान का साक्षात उपस्थिति में भी भगवान को नहीं देखते। तो अधोक्षज दिव्या दृष्टि अर्थात प्रेममयी दृष्टि से भगवान का दर्शन मिलते। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से हम भगवान की कृपा से अधिकार मिलते हैं भगवान को देखने। तो हम कैसे अधिकार मिलेंगे, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ? सेवा संबंध, प्रेम सेवा संबंध। तो यदि हम प्रस्तुत नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, तो हम भगवान हमको इनका दर्शन हमको नहीं देंगे। यदि हम सेवा मुख है तो भगवान हमको योग्यता देंगे इनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियाय सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति। भगवान का नाम गुण रूप, कृष्ण का नाम गुण रूप लीला परिका वैशिष्ट्य इत्यादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियाय, साधारण स्थूल इंद्रियों में से भगवान कृष्ण का अनुभव करना संभव नहीं है। यदि हम सेवोन्मुख हैं अर्थात उत्साही है श्री कृष्ण की सेवा करने, किस प्रकार की सेवा? अहैतुकी या प्रतिहता। अहैतुकी इसका मतलब कोई भौतिक कारण नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं है। कृष्ण सेवा केवल कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रीति के लिए करना है, वो अहैतुकी सेवा बोलते हैं। और अप्रतिहता सदैव कोई छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं होते हैं। नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और साल में दो हफ्ते की छुट्टी होते, तो हम सब नियम पालन करते हैं और दो हफ्ते छुट्टी हम गोवा जाते हैं और क्या बोलते हैं, वो एक प्रकार का शराब है, नहीं जो खजू खजू का फल से फैल खजू फैली फेरी। तो शिष्ट लोग नहीं लेते, विस्की पीते हैं और नीच लोग पीते हैं। क्या नीच लोग? ठीक है, सो माफ कीजिए, आपके लिए नहीं। आप जैसे लोग वो के लिए नहीं है। आप जैसे मतलब नॉट यू बट योर लेवल ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग विस्की, नॉट दैट्स फॉर वेरी लो पीपल। हम हाई क्लास है, हम विस्की पीते हैं। So there's no holiday. बचपन में ऐसा शंका थी कि देखा कि वो चर्च में वो सब प्रीस्ट तो हर रोज वो मैस लेते हैं लेकिन साल में दो हफ्ते में तो छुट्टी जिसमें वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब मैस प्रेयर सब बंद करते हैं और क्या कहते हैं कोई नहीं जानते, वो इसको भी निकालते इंजॉय करते हैं, तो भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है। और शुद्ध भक्तजन कोई छुट्टी नहीं चाहते, चाहते हैं कि और ज्यादा समय में भी हम अवसर लेंगे भगवान की सेवा करने। तो जब मैं इस्कॉन का आश्रम पहले जुड़े हुआ तो ऐसा बोलना था, तो कम खाओ आराम कम करो और ज्यादा सेवा करो। निद्राहार विहार कार्य विजितो शारद गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। निद्रा आहा विकार, इस प्रसंग में विकार का मतलब और सभी दैहिक कर्तव्य, तो कम करो और ज्यादा सेवा करो। तो ये अहितु की अप्रतिहता भक्ति और इस प्रकार की भक्ति से सेवनों के ही जीवाणु स्वयमेव स्फुरति अधः। कृष्णा हमको कृपा देते हैं जिससे हम सदैव अवसर मिलेंगे भगवान को देखने के लिए, क्योंकि शुद्ध भक्तजन की इच्छा नहीं है कि मैं भगवान को देखूंगा मेरा आनंद के लिए मेरा सुख के लिए नहीं है, तो मेरा उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। और अगर भगवान संतुष्ट है तो वे इनका रूप मुझको देखेंगे, और अगर नहीं तो नहीं देखूंगा, तो फिर भी मेरा धर्म है मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो अहितु की अप्रतिहता भक्ति से अधोक्षज विष्णु प्राप्त होते हैं, इनका दर्शन होते हैं। अहितु की हमारी भक्ति यदि अहितु की अप्रतिहता नहीं होते हैं, तो अधोक्षज भगवान का दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो वो अधोक्षज भी अधोक्षज साक्षात का वो वैकुंठ का पर्याय है, और उसके ऊपर भी और एक स्तर है अधोक्षज जो साधारणी दृष्टि से दृष्ट नहीं होते हैं वे ही भगवान। जो साधारण दृष्टि है प्रत्यक्ष, जो हम साधारण आंखों से देखते हैं, साधारण मतलब भौतिक बुद्धि से सब कुछ जो हम देखते हैं, मैं देखता हूं विचार करता हूं वो क्या मेरे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। अगर अनुकूल हो हम ग्रहण करते हैं, अगर प्रतिकूल है हम अग्रहण करते हैं। मन कलुषित मन की दो वृत्ति है संकल्प विकल्प, अगर मैं कुछ देखता हूँ अच्छा लगता हूँ, ठीक है मुझे दो, हम प्रयास करते उसको ग्रहण करना, और अगर वो अच्छा नहीं लगते तो उससे भय लगते है या उसको ग्रहण नहीं करते। और ऐसे कान में से सब कुछ जो हम सुनते हैं तो अच्छा लगते ठीक है तो रेडियो और ज्यादा बजाओ, और नहीं अच्छा नहीं लगते उसको बंद करो। तो सभी इंद्रियों में से हम भौतिक जगत भौतिक स्थिति के बारे में ज्ञान मिलते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अधोक से जब भगवान विष्णु के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन क्या होते हैं, सामान्यतः लोग जो धार्मिक है धर्म करते हैं भगवान या गॉड या अल्लाह को विश्वास करते हैं, किस लिए, जिससे इनके भौतिक इंद्रिय सुख का वर्धन होगा। तो ऐसे अधोक से जब भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होता, हम सोचते हैं कि पूरा जगत में सब सभी वस्तुओं जो है मेरे सुख के लिए है, और अगर भगवान हो तो इनकी शक्ति के द्वारा मेरा सुख वर्धन होगा, तो वो भगवान नहीं है। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, हमारा धर्म है भगवान का सुख के लिए सब कुछ करना। लेकिन दूषित बुद्धि से हम विचार करते हैं कि भगवान का धर्म है मेरा सेवा करना, तो ऐसे भगवान काल्पनिक भगवान वास्तविक भगवान नहीं है। तो ऐसे धर्म तो वास्तव में वो धर्म नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण कहते सावधामान परित्यज माम एकम शरणम रज। भगवान जो धर्म संस्थापन का अर्थ के लिए आते हैं अंत में बोलते सर्वधामान परित्यज, तो सब धर्म छोड़ दो सभी, तो और इस धर्म मेरे चरण में शरण पूर्ण शरण देना वो ही धर्म ग्रहण करो। तो प्रत्यक्ष एक और प्रकार का ज्ञान है परोक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात स्वयं के अक्ष के द्वारा जो हम देखते, स्वयं के कानों में से जो हम सुनते हैं, स्वयं का जीवा से उस स्वाद जो हम मिलते हैं, जो ऐसे ग्यारह इंद्रियां हैं पांच पांच ज्ञान इंद्रिय है, पांच काम इंद्रिय है, और दोनों का केंद्र है मन। तो ऐसे प्रत्यक्ष बुद्धि होती है और परोक्ष ज्ञान भी है। परोक्ष पर अक्ष अर्थात जो ज्ञान जो हम अन्य व्यक्तियों के अक्ष से मिलते। कोई है यहां पर जो जापान गया है टोक्यो, एनीवन? आई वेंट वंस, एनीवन? तो टोक्यो है ही नहीं, ऐसे जगह है टोक्यो आप सब विश्वास करते हैं, लेकिन कोई नहीं गए तो कैसे आप जानते हैं कि टोक्यो जापान का राजधानी है, कैसे आप मालूम है? तो टीवी पर देखा, में स्कूल में पढ़ते हैं द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, तो ऐसे आपका विश्वास है। तो आप स्वयं प्रत्यक्ष से, आपका प्रत्यक्ष क्या नहीं है कि जापान ऐसे स्थान है, लेकिन आपको विश्वास है परोक्ष। अन्य व्यक्ति बोलते कि जापान का राजधानी है टोक्यो, तो ये परोक्ष ज्ञान बहुत है। ये एक और प्रकार का ज्ञान है अपरोक्ष, जो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष मिलके जो हम अंदर में विचार करते हैं या अंतर्दर्शन से वो ज्ञान जो जिसका स्मृति होती है अपने आप, वो अपरोक्ष बोलते हैं। तो ये प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष ये सब भौतिक है, और आध्यात्मिक ज्ञान अधोक्षज ज्ञान है। तो वो अधोक्षज ज्ञान अधोक्षज विष्णु के बारे में है, और उसके ऊपर भी और एक स्तर है, वो अप्राकृत बोलते। अप्राकृत ज्ञान का मतलब कृष्ण की व्रज लीला। अधोक्षज इसका मतलब भगवान जो महान है, और इनके महान कोई नहीं है। तो फिर भी महान अधोक्षज भगवान स्वयं निम्न स्तर लेते हैं लीला में। तो हमारे विचार में, जीव का विचार में, कृष्ण के ऊपर नहीं है। और कृष्ण ऐसे बोलते हैं भगवद गीता में, मतपरत्राम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। तो ये ही आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, और ये ही भगवान शब्द की परिभाषा है। भगवान के ऊपर नहीं है कोई, भगवान के समान नहीं है, वही ही सर्वश्रेष्ठ है। पर कृष्ण का विचार में मेरा बाप है नंद महाराज, मेरे ज्येष्ठ भाई है बलराम, राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वर ऐसे नाम कभी सुना नहीं? वृंदावनेश्वरी राधा। तो लीला विचार में कृष्ण से बड़ा है राधा, नंद महाराज, यशोदा। ये अप्राकृत ज्ञान है, अधोक्षज स्तर के परे अप्राकृत स्तर है। तो ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नहीं समझने से वो सब धर्म जो धर्म का नाम में चलते हैं, तो सब में कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत भूल धारणा भी होती है। अगर हम नहीं समझते कि कैसे भगवान प्रकृति के तीन गुण के परे है, तो गॉड गॉड हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सब बोल के भी तो हमारी स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती भगवान के बारे में। तो इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ है, तो भगवान कौन है, भगवान की भगवता अर्थात भगवान कैसे भगवान है, भगवान बोल के क्या समझना चाहिए। तो ये सब विषय की चर्चा है भागवत का आरंभ में, और ये सब अच्छी तरह नहीं समझ के तो भागवत शास्त्र में प्रवेश नहीं होते। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी विषय अच्छी तरह समझना। तो अधोक्षज ये शब्द का क्या मतलब है, कोई मुझको बताएंगे अधोक्षज। इस शब्द का क्या मतलब है? Beyond mundane sense perception. भौतिक इंद्रिय ज्ञान के परे, के अतीत अधोक्षज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस विषय बहुत महत्वपूर्ण और इसके बारे में कम से कम 12 घंटे का क्लास होना चाहिए, लेकिन समय इतना सा नहीं है। अच्छा होता कि हम सब दूसरे धर्म, ऑफिस धर्म, फैक्ट्री धर्म इत्यादि बोल करेंगे और यहां बैठ के 10 दिन 10 महीना अधोक्षज शब्द पर बात करेंगे। लेकिन आधुनिक प्रगति ऐसी होती है कि शक्यता नहीं, इसलिए संक्षेप में हम प्रयास करेंगे ये सब चर्चा करना। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सब प्रायनाल प्रायस सभ्यो, सबकी आयु बहुत कम होते हैं। कलावस्मिन, इस कलयुग में प्रायनाल प्रायस सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत यो मंद भाग्य ही उपद्रुता। तो ये सब लक्षण है, प्रत्यक्ष से हम देख सकते हैं। इसलिए उच्च अधोक्षज ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष से हम देख सकते हैं सब मंद मंद भाग्य, मंद बुद्धि और उपद्रुता मुख्य कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सब लोग सदैव विचलित, सबके मन विचलित रहते। तो समय नहीं है और मति भी वैसी नहीं होते। बुद्धि 10 महीना बैठ के अधोक्षज शब्द पर चर्चा करना। तो इसलिए हरे नाम एव केवलम, हरि नाम की कृपा से ये उच्चने विषय जो महान ऋषि मुनिगण पूर्व युगों में नहीं समझ पाया, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम कलिहत्त जीव अनाधिकारी होने के पर इस श्रेष्ठ दिव्य ज्ञान पर अवगत हो सकते हैं।